नमस्ते फ्रेंड्स, हम सबका स्वागत ओशो रेडियो में। ओशो रेडियो जो ओशो के डिस्कोर्स और ओशो से इंस्पायर्ड म्यूजिक के साथ बनता है।
Yeah.
आज का डिस्कोर्स उत्सव आमार जाति आनंद आमार गोत्र वॉल्यूम नंबर 4 से लिया गया है, जिसमें ओशो हमें बता रहे हैं कि कैसे हम जीवन को एक संघर्ष या एक उत्सव की तरह चुन सकते हैं।
दूसरा प्रश्न, भगवान क्या जीवन मात्र संघर्ष ही है, संघर्ष और संघर्ष, या कुछ और भी? कृष्ण तीर्थ, जीवन तो वही हो जाता है जैसा तुम उसे बनाते हो। तुम मालिक हो, जीवन तुम्हारा है, तुम नियंता हो, तुम निर्णायक हो। जीवन तो एक अनगढ़ पत्थर है, इससे तुम क्या बनाओगे सब तुम पर निर्भर है। चाहो तो इस अनगढ़ पत्थर को किसी की छाती पर रख दो, चाहो तो इस अनगढ़ पत्थर को किसी के सिर पर पटक दो, प्राण ले लो, चाहो तो इस अनगढ़ पत्थर को गढ़ो, मूर्ति बनाओ जो किसी मंदिर में शोभा बने, जो किसी मंदिर की आराध्य बने। सब तुम पर निर्भर है। जीवन तो मिलता है एक कोरी किताब की भांति, गालियां लिखोगे कि गीत, सब तुम पर निर्भर है। जीवन तो मिलता है एक वीणा की भांति, शोरगुल मचाओगे कि संगीत पैदा करोगे, सब तुम पर निर्भर है। तुम मुझसे पूछते हो क्या जीवन मात्र संघर्ष ही है, अधिक लोग जीवन को संघर्ष की तरह ही जानते, क्योंकि उन्होंने अहंकार को ही जीवन का आधार बना लिया। अहंकार है तो जीवन संघर्ष है, अगर अहंकार ही अहंकार है तो जीवन संघर्ष ही संघर्ष है। और ऐसा संघर्ष जिसमें विजय कभी नहीं आएगी, ऐसा संघर्ष जिसमें दौड़ोगे तो बहुत लेकिन पहुंचोगे कहीं भी नहीं, ऐसा संघर्ष जिसमें जलोगे तिल तिल, सड़ोगे तिल तिल और मृत्यु के अतिरिक्त तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं होगी। अहंकार अगर तुम्हारे जीवन का आधार है तो तुम्हारा जीवन सिर्फ युद्ध होगा, ईर्षा, जलन, वैमनस, हिंसा। अहंकार अगर तुम्हारे जीवन की बुनियाद है तो तुम्हारा जीवन सिवाय राजनीति के और कुछ भी नहीं होगा। और ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं राजनीति तो मेरा अर्थ उन सारी जीवन दिशाओं से है जहां तुम दूसरों के साथ प्रतियोगिता करते हो, स्पर्धा करते हो। वो जो बाजार में धन के लिए लड़ रहा है वो भी राजनीति में है, वो राज करना चाहता है धन के बल पर। वो जो ज्ञान के सागर में किसी विश्वविद्यालय में उपाधियों पर उपाधियां इकट्ठी किए जा रहा है वो भी राजनीति में, वो राज करना चाहता है उपाधियों के बल पर। मैं बनारस में मेहमान था, जिनके घर मेहमान था वो एक सज्जन को मुझे मिलाने लाए। उन्होंने बड़ी प्रशंसा में कहा कि आप मिलने योग्य व्यक्ति हैं, आप 12 विषयों के एमए। मैंने कहा इन्हें बाहर करो क्योंकि इनका दिमाग खराब होगा। जिंदगी कमाई 12 विषयों के एमए होने में, एक आध विषय में एमए होना ठीक है, माफ किया जा सकता है, लेकिन 12 विषयों में हो से इस आदमी को क्या करोगे 12 विषयों में एमए होकर? नहीं, लेकिन ये भी अकड़ बन गई, ये भी अहंकार को तृप्त कर रही बात कि और कोई इतने ज्यादा विषयों में एमए नहीं जितने विषयों में मैं हूं। हालांकि इस आदमी के चेहरे को देख के मुझे जरा भी नहीं लगा कि इसमें बुद्धिमत्ता की कोई भी झलक हो भी नहीं सकती। 12 विषयों में एमए होते होते बुद्धू हो ही जाएगा, कोई भी हो जाएगा। विश्वविद्यालय से अपनी बुद्धिमत्ता को बचा के निकल आना बड़ा कठिन काम है। जब पहली दफा हेनरी थारो विश्वविद्यालय से घर वापस लौटा तो गांव के एक बूढ़े आदमी ने आकर उसकी पीठ ठोंकी और कहा, बेटा मैं बहुत खुश हूं। हेनरी थारो ने कहा, क्या आप खुश हैं क्योंकि मैं विश्वविद्यालय की बड़ी उपाधि लेकर लौटा? उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझना, मैं इसलिए खुश हूं, मैं देखने आया था कि विश्वविद्यालय ने तुझे बर्बाद तो नहीं कर दिया, मगर तू बच के आ गया, तेरी आंखों में अभी भी बुद्धिमानी दिखाई पड़ती, तेरी आंखों में अभी भी थोड़ा होश है, चमक है, तेरे चेहरे पे अभी भी प्रतिभा है, तू अपनी प्रतिभा बचा के लौटाया, यही देखने में आया था। विश्वविद्यालय में से 99% लोग प्रतिभा बचा के नहीं लौटते, और जो आदमी 12 विषयों में एमए करता रहा, करते ही रहा, जिंदगी इसी में गंवा दी, ये भी राजनीति है। राजनीति का अर्थ है स्पर्धा, संघर्ष, यहां दूसरों को हराना है, दूसरों को मिटाना है, यहां दूसरों के सिरों के ऊपर चढ़ना है, यहां दूसरों की लाशें भी पड़ जाएं तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन पदों पर, प्रतिष्ठा पर, सम्मान पर पहुंचना है। अहंकार की छाया है राजनीति, इसलिए निरअहंकारी राजनीति में नहीं हो सकता, न धन की, न पद की, न ज्ञान की, न त्याग की। निरअहंकारी इस स्पर्धा में ही नहीं होता, निरअहंकारी सिर्फ होता है आनंदमग्न मस्त। निरअहंकारी के लिए कल नहीं है सुख, अभी है सुख, यही है सुख। अहंकारी के लिए कल लड़ेगा, धन कमाएगा, बचाएगा, बड़े पदों पर पहुंचेगा, तब सुख होगा। अहंकारी का सुख किन्हीं शर्तों पर निर्भर है। कृष्ण तीर्थ, अगर अहंकार से जियोगे तो जीवन संघर्ष है, और अगर जीवन संघर्ष है तो याद रखना तुम परमात्मा को कभी पहचान न पाओगे, क्योंकि परमात्मा को संघर्ष से नहीं जाना जाता। परमात्मा के साथ कोई युद्ध थोड़ी करना है, परमात्मा पर कोई विजय थोड़ी करनी, परमात्मा के सिर पर जाके कोई विजय का झंडा थोड़ी गाड़ना, परमात्मा कोई धन तो नहीं है जिसे तुम तिजोरी में बंद करोगे, परमात्मा कोई वस्तु तो नहीं है जिसे तुम मुट्ठी में बांध लोगे, और परमात्मा कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि एक ने पा लिया तो अब तुम कैसे पाओगे। जरा फर्क समझना, अगर एक आदमी ने धन पा लिया तो तुम्हें पाने में मुश्किल हो जाएगी, उतना धन कम हो गया। अगर एक आदमी प्रधानमंत्री हो गया तो अब तुम कैसे होगे? एक ही कुर्सी पर दो आदमी तो नहीं बैठ सकते, हालांकि कोशिश करते हैं कई कई आदमी एक साथ बैठने की। अभी इस वक्त इस देश में तीन आदमी एक साथ बैठने की कोशिश में लगे हुए एक ही कुर्सी पे। मगर एक कुर्सी पे कैसे बैठोगे? धक्कम धुक्की होगी। इस जगत में सब चीजें सीमित हैं। इस जगत में जो कुछ भी पाने जाओगे वहां तुम पाओगे, अगर किसी और ने पा लिया तो तुम्हारी उतनी कम हो गई बात, उतना तुम्हें कम मिलेगा। इसलिए अहंकार प्रत्येक को दुश्मन मानता है, कहे चाहे ना कहे। तुम चाहे लाख कहो कि हम सब मित्र हैं, मगर जब तक तुम संघर्ष में लगे हो कैसे मित्र हो सकते हो? तुम भी धन खोजने चले हो, तुम्हारा पड़ोसी भी धन खोजने चला है, तुम मित्र हो कैसे सकते हो? अगर पड़ोसी ने पहले पा लिया तो तुम चूकोगे, अगर तुमने पहले पा लिया तो पड़ोसी चूकेगा। दुश्मनी ही होगी, मित्रता ऊपर ऊपर होगी, औपचारिक होगी। हमने प्रतिस्पर्धा को इतना फैला दिया है, हमने लोगों के खून में राजनीति का जहर इस तरह डाला है कि इस दुनिया में मैत्री असंभव हो गई। शत्रु ही शत्रु हैं और संघर्ष ही संघर्ष है। इस संघर्ष और शत्रुता में घिरे तुम परमात्मा को नहीं जान पाओगे, आनंद नहीं जान पाओगे, उत्सव नहीं जान पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो घटने योग्य कभी नहीं घटेगा। तुम रहोगे, किसी तरह घसटोगे और मरोगे। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अर्थवत्ता नहीं होगी, भगवत्ता ही नहीं होगी तो अर्थवत्ता कैसे होगी? भगवान के बिना कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यही कोई एक ढंग नहीं है जीने का, जीने का और भी ढंग है। संघर्ष से क्यों जीते हो, समर्पण से क्यों नहीं? लड़के जीने की भी बात क्या, बिना लड़के भी जिया जा सकता है। आशा की रात में तारों की बारात देख सबनम सी जिंदगी आई उतर धरती के पात पर करके सिंगार, सिंदूर भरे मांग से सूरज का मुख हुआ लाल, गाल पर अनुराग की पड़ी भवर, जाने कब ढुलक गई पानी की माया, मिट्टी की काया, राम नाम सत्य है, धरती का सत्य, युग युग का सत्य, फिर सत्य से भय क्यों? इसलिए कि नर ने न मानी हार, लड़ रहा काल से, लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा वंशज भगीरथ का, जब तक न बहता है वह तरणसा गंगा की धार में। एक तो है तैरना और एक है तरणसा गंगा की धार में बह जाना। एक तो है लड़ना, लड़ने का अर्थ है अस्तित्व को तुमने शत्रु मान लिया, और एक है मैं अस्तित्व का अंग हूं, लड़ना किससे, बह जाना गंगा की धार में तरण की भांति, फिर जीवन में एक दूसरा ही स्वाद उत्पन्न होता है। उसे ही मैं संन्यास का स्वाद कहता हूं, बह जाना गंगा की धार में, लड़ना मत तैरना मत, गंगा पराई थोड़ी अपनी है, गंगा से हम भिन्न तो नहीं, तैरना क्या है लड़ना क्या है। कृष्ण तीर्थ जीवन संघर्ष ही संघर्ष नहीं है, यद्यपि अधिक लोग इसी तरह जीवन को जान पाते। जीवन आनंद भी है, उत्सव भी है, और मजा यह कि संघर्ष संताप पैदा करता है, संघर्ष विफलता लाता है, विजय नहीं, और समर्पण अपूर्व शांति पैदा करता है और सफलता लाता है, विजय लाता है। परमात्मा के जगत के नियम बड़े अनूठे हैं, इसलिए तो कबीर जैसे लोग उलट बांसियां कहे। उलट बांसियां इसलिए कहे कि परमात्मा के नियम बड़े अनूठे हैं। जैसे इस जगत में अगर कुछ बचाना है तो छीना झपटी करो, अगर परमात्मा के जगत में कुछ बटाना है, कुछ बचाना है तो बांटो लुटाओ। जीसस ने कहा जो बचाएगा उसका छीन लिया जाएगा और जो लुटाएगा उसका बच जाएगा। जीसस ने कहा है जो इस जगत में प्रथम है वो मेरे प्रभु के राज्य में अंतिम होंगे, और जो इस जगत में अंतिम है मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम। वहां गणित कुछ और है, अगर धन को लुटाओगे तो भिकमंगे हो जाओगे, और अगर ध्यान को लुटाया तो सम्राट हो जाओगे। अगर धन को लुटाया तो आज नहीं कल मांगोगे दरदर्श, और अगर प्रेम को लुटाया तो अनंत स्रोत खुल जाएंगे जो बंद पड़े, रोज नया नया प्रेम तुम्हारे भीतर उमकता आएगा, नए नए झरने ताजी ताजी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे भीतर लाने लगेंगे। जो कुआ बंद कर दिया जाए वो सड़ जाता है, उसके झरने भी बंद हो जाते, उसका जल भी विषाक्त हो जाता है। कुआ तो जीता है, भरते रहो पानी उलीचते रहो पानी, इसलिए ज्ञानी कहते हैं दोनों हाथ उलीचिए, एक हाथ से भी काम नहीं चलेगा दोनों हाथों से उलीचो बांटो। मगर बांट तो तुम तभी सकते हो जब तुम्हारे जीवन की दिशा संघर्ष ना हो, समर्पण हो, जब तुम्हारे जीवन की दिशा युद्ध ना हो, विश्राम हो, जब तुम तलवार लेके ना जूझो बल्कि हाथ में एक फूल लेके, जबकि तुम्हारे ओंठों पर बांसुरी हो, हाथ में तलवार नहीं। इसलिए मुझे राम की प्रतिमा, धनुर्धारी राम की प्रतिमा कभी भी मन नहीं भाई। मेरे मन तो बांसुरी बजाते कृष्ण भाए, धनुर्धारी राम कहीं न कहीं संघर्ष के प्रतीक, युद्ध के प्रतीक है, कहीं न कहीं जीतना है। और इसलिए ठीक किया है इस देश ने कि कृष्ण को छोड़ के किसी को पूर्ण अवतार नहीं कहा, सबको अंशावतार कहा। शुभ है, सुंदर है, मगर आंशिक रूपों में कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा। क्यों? क्योंकि बांसुरी पे जाके बात पूर्ण हो गई, आनंद पर जाके बात पूर्ण हो गई, उत्सव पे जाके बात पूर्ण हो गई, अब उसके पार कुछ भी ना बचा। कृष्ण तीर्थ बांसुरी की टेर सुनो, बांसुरी क्या कह रही है? संघर्ष नहीं, समर्पण। और विजय सुनिश्चित है। तैरो मत बहो, गंगा सागर की तरफ जा ही रही है, तुम भी पहुंच जाओगे। लेकिन कुछ है जो न केवल तैरते हैं बल्कि उल्टी धार में तैरते हैं, जो गंगोत्री की तरफ तैरने की कोशिश करते हैं। उसका भी कारण है, अहंकार को तभी रस आता जब उल्टा कुछ करो। इस अहंकार के रस के मनोविज्ञान को तुम ठीक से समझ लो, क्योंकि सदियों में हजारों हजारों लोगों ने इसी तरह अपने जीवन को गमाया है, इसी मनोविज्ञान को न समझने के कारण। एक आदमी सिर के बल खड़ा हो जाता है, भीड़ लग जाती फौरन, तुम पैर के बल घंटों खड़े रहो, कोई नहीं आता। बड़ी अजीब दुनिया है। उल्टे में इसका बड़ा रस है। एक आदमी उल्टे सीधे शरीर को मोड़े तोड़े, बस लोग कहने लगते हैं कि महायोगी। कोई आदमी उपवास करे और लोग कहते हैं त्यागी तपस्वी। कोई धूप में खड़ा रहे, कोई शीत में गलता रहे, कोई हिमालय पर जाके नंगा बैठ जाए, बर्फ पड़ती रहे, बस लोग बड़े आदर भाव से भर जाते। ये आदर भाव बहुत भिन्न नहीं है उस आदर भाव से जो तुम सर्कस में दिखलाते हो, सर्कसी काम करने वाले लोगों के प्रति, कि कोई रस्सी पे चल रहा है नट और तुम्हारी धक धक बंद हो जाती कि कहीं गिर न जाए। कोई आग के वर्तुलों में से कूद रहा है, सिंहों को नचा रहा है। मैंने सुना है एक सर्कस में ऐसा हुआ, सिंहों को नचाने वाला अचानक हार्ट फेल से मर गया। भर दोपहरी, ज्यादा समय नहीं, शाम होने का वक्त आ रहा है, सर्कस का विज्ञापन हो चुका है, क्या करें अब, क्या ना करें। मैनेजर ने गांव भर में ढूंढी पिटवाई कि है कोई हिम्मतवर जो कुछ सिंहों के साथ खेल कर सके, और देख के चकित हुआ, आई एक महिला, सुंदर महिला। उसने कहा तू क्या कर सकती, तू क्या कर पाएगी? उसने कहा मैं वो चमत्कार कर सकती हूं जो अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। मैं जाके घुटने के बल खड़ी हो जाऊंगी और तुम देखना, सिंह आके अगर मेरा चुंबन ना ले। मैनेजर भी हैरान हुआ, चमत्कार उसने बहुत देखे थे, जिंदगी भर मैनेजरी की, सर्कस की एक से एक काम देखे थे, मगर ये काम उसने नहीं देखा था। उसने कहा तू ठीक कह रही, ठीक, तो जो तेरी मांग हो पूरी कर देंगे। आज का खेल अगर सफल हुआ तो तू जो तनख्वाह मांगेगी कल से तेरी तनख्वाह तय हो जाएगी, और आज का तुझे जो चाहिए वो मांग ले। उसने कहा पीछे ले लेंगे, लेने की बात पीछे हो जाएगी, पहले खेल हो जाए। गांव भर में खबर भी फैल गई, उस दिन बड़ी भीड़ भाड़ थी, क्योंकि लोगों ने देखा था हंटर मारते हुए आदमी को, शेरों को नचाते, लेकिन एक सुंदर स्त्री वहां जाके घुटने टेक के खड़ी हो जाएगी और सिंह उसका चुंबन लेगा। और ये हुआ, वही युवती आई आके घुटने टेक के खड़ी हो गई। सिंह आया, सख्ता छा गया, लोगों की सांसें बंद हो गईं। लोगों ने तो समझा कि मारी गई बेचारी, हाथ में कोड़ा तक नहीं, बचाव का कोई उपाय नहीं। और मैनेजर ने दरवाजा भी बंद करवा दिया था कटघरे का, क्योंकि ये खतरनाक मामला, नया मामला, क्या हो इसका परिणाम, शेर कहीं बाहर आ जाए, कुछ से कुछ हो जाए। सिंह दहाड़ा, उसकी दहाड़ सुन के क्या हालत हुई होगी, मगर युवती अडिग खड़ी रही। सिंह दहाड़ा पास आया, फिर पूंछ हिलाने लगा, फिर आकर उसने स्त्री का चुंबन लिया और वापस जाके अपनी कुर्सी पे बैठ गया। चमत्कार। मैनेजर ने घोषणा की कि 10,000 रुपए हम इनाम देते हैं इस स्त्री को, अगर कोई मर्द यहां हो जो ये काम करके दिखा सकता हो तो उसके लिए हम 20,000 देंगे। मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा हो गया। लोगों में और सत्ता छा गया कि बड़े मियां को क्या सूझा, ये किसी एक ताकतवर कुत्ते को भी ना संभाल पाए, अब तो और भी सन्नाटा छा गया। मुल्ला पहुंचा, मैनेजर ने कहा कि बड़े मियां आप होश में हो, ज्यादा तो नहीं पी गए हो, क्या करने जा रहे हो, ये सिंह है और इस स्त्री को उसने चूमा है, आप भी ये खेल करके दिखा सकते हो। उसने कहा बिल्कुल दिखा सकता हूं, लेकिन पहले सिंह के बच्चे को बाहर निकालो, यही खेल करके दिखाऊंगा, मगर जब तक सिंह भीतर है तब तक मैं भीतर नहीं जाऊंगा। लोग उल्टे काम करने में तो राजी होते, इसके लिए कोई राजी नहीं हुआ। लोगों ने कहा अरे बड़े मियां, हमें पहले ही पता था कि तुमसे क्या होगा, ये भी तुमने खूब शर्त लगाई, हो हल्ला हो गया, हंसी मजाक हो गई। लोग उल्टे में रस लेते हैं, उल्टे से अहंकार की तृप्ति होती। तुम किनको पूजते हो, कभी तुमने सोचा है अपने हृदय में कि तुम्हारी पूजा सिर्फ इसी कारण तो नहीं है कि वह आदमी सिर के बल खड़ा है, कुछ उल्टा कर रहा है, कुछ अस्वाभाविक कर रहा है, कोई आदमी कांटों पर लेटा है, बस तुम्हारे मन में एकदम श्रद्धा के सुमन खिले। तुम पागल हो, कांटों पर लेट जाने से क्या होगा, भूखे मरने से क्या होगा, पहाड़ों पर गिरती बस में नग्न बैठ जाने से क्या होगा। ये सब अभ्यास है और सरल अभ्यास है, कोई बहुत कठिन अभ्यास नहीं है। तुम्हें अगर तैयारी करनी हो तो मैं तुम्हें सुगम उपाय बता सकता हूं, ये बहुत सरल अभ्यास है। तुम जरा अपने छोटे बच्चे को कहना कि सुई लेके तू जरा मेरी पीठ पे जगह जगह चुभा, और तुम चकित हो जाओगे। बच्चा अगर 50 जगह चुभाएगा तो तुमको सिर्फ 25 जगह सुई चुभती मालूम पड़ेगी, और 25 जगह तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीठ पर ऐसे बिंदु हैं जो ब्लाइंड स्पॉट है, जिनमें कोई चुभन पता नहीं चलती। बस वो जो कांटों पर लेट रहा है उसका कुल काम इतना है कि उसने अपनी पीठ पर कहां कहां चुभन पता नहीं चलती वो बिंदु खोज लिए, और कांटों की जो सेज बनाई है वो इस ढंग से बनाई गई है कि बस वो उन्हीं बिंदुओं पर कांटे पड़ते जिन बिंदुओं पर चुभन का पता नहीं चलता। तुम चाहो तो आज ही जाके घर अपने बच्चे को कहना जरा सुई लेके तू मेरी पीठ पर चुभा, और तुम बहुत हैरान होगे, बच्चा चुभा रहा और तुम्हें पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उस स्थान पर कोई संवेदनशील तंतु नहीं, तुम्हारी पूरी पीठ अनुभव नहीं करती, थोड़े से बिंदु हैं जो अनुभव करते, बस उनको छोड़ दो, बाकी पर तुम भी लेट सकते हो कांटों पर। तिब्बत में लामा अभ्यास करते हैं श्वास की एक खास प्रक्रिया का, एक खास ढंग से श्वास लेना गहरी और उसको खास समय तक भीतर रोकना, फिर उसे झटके से बाहर फेंक देना, फिर तेज तीव्रता से श्वास लेना, पूरे फेफड़ों को भर लेना, फिर उसे भीतर रोकना। साधारणता तुम जो श्वास लेते हो इससे तुम्हें उतनी गर्मी मिलती है जितनी तुम्हारे शरीर को जरूरी है। ये जो तिब्बती ढंग है श्वास लेने का, पूरे फेफड़े को भर देना, तुम आमतौर से जो श्वास लेते हो उससे तुम्हारा एक तिहाई फेफड़ा श्वास से भरता है। 6000 छिद्र अगर तुम्हारे फेफड़े में है तो केवल 2000 छिद्रों तक श्वास पहुंचती, 4000 छिद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती रहती। वो जो तिब्बती ढंग है उसमें पूरे 6000 छिद्र ऑक्सीजन से भर जाते, 3 गुनी मात्रा में ऑक्सीजन तुम्हारे भीतर हो जाती। ऑक्सीजन अग्नि है, अगर उतनी ऑक्सीजन को तुम अपने भीतर रोक सको तो तुम्हारा खून उत्तप्त होने लगता है। उस उत्तप्त खून के कारण बर्फ भी पड़ती रहे तो तुम्हारे शरीर से पसीना चूता रहेगा। अब ये सिर्फ साधारण अभ्यास है, ये तुम कर सकते हो, इसमें कोई अड़चन नहीं। मगर तिब्बती लामा को लोग इसलिए सम्मान देते कि चमत्कार, इसको कहते हैं योग बल। ये न योग बल है न कोई चमत्कार है, और जितने चमत्कार तुम सोचते हो वो सब इसी तरह के, उन सब की व्यवस्था है। मगर कोई आदमी उल्टा कर रहा है और तुम्हारे मन में समादर पैदा होता है। इस कारण दुनिया में धर्म करीब करीब सर्कस का खेल हो गया। मैं एक ऐसा धर्म देखना चाहता हूं दुनिया में जो स्वाभाविक हो, उसको सम्मान दो जो बिल्कुल स्वाभाविक है, उसको सम्मान दो जो बिल्कुल प्राकृतिक है। तो अधिकतम लोग इस दुनिया में धार्मिक हो सकेंगे। और सबसे ज्यादा स्वाभाविक बात क्या है? संघर्ष से मुक्त हो जाना, क्योंकि जो संघर्ष से मुक्त हुआ उसके तनाव गए, उसकी चिंताएं गई। जो संघर्ष से मुक्त हुआ वह शिथिल हुआ, विश्राम को उपलब्ध हुआ। गंगा की धार में उल्टे मत तैरो, गंगा की धार में साथ बहो। ये धार अपनी, हम भी इस धार के हिस्से, जीवन की इस गंगा में बहते चलो। ये गंगा सागर तक पहुंच ही जाएगी, ये जा ही रही, तुम नाहक परेशान हो रहे हो। तुम्हत वैसी है जैसे एक सम्राट राजमहल लौट रहा था शिकार खेलकर। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो सिर पर गठरी लादे हुए चल रहा है किसी तरह, बहुत बूढ़ा है और बहुत ज्यादा है। ऐसे सम्राटों को दया नहीं आती, लेकिन एक तो शिकार करके लौट रहा था, जंगल था, अकेला था, इस बूढ़े आदमी को बड़ी देर से देख रहा था कि घसीट रहा है। कहा कि रुक, तू आके मेरे रथ में बैठ जा। बूढ़े की हिम्मत तो नहीं पड़ी, लेकिन सम्राट आज्ञा दे तो इनकार भी नहीं कर सका। तो किसी तरह सिकुड़ के सम्राट के चरणों में रथ में बैठ गया। मगर वो जो रखे है सिर पर बोझ, वो सिर पर ही रखे रहा। सम्राट ने कहा, अरे पागल, अब ये बोझ सिर पर क्यों रखे, इसको नीचे क्यों नहीं रख देता? उसने कहा कि नहीं महाराज, नहीं, आपकी इतनी कृपा क्या कम है कि आपने मुझे रथ में बिठा लिया। अब आपके रथ पर अपने सिर का बोझ भी डालूं? नहीं नहीं, ये मुझसे ना हो सकेगा, यही तुम्हारी दशा है। ये बूढ़ा समझ रहा है कि ये सिर का जो बोझ है रथ पे नहीं पड़ रहा है, रथ पे तो पड़ ही रहा है, चाहे रथ पे रखो और चाहे अपने सिर पर रखो, क्योंकि तुम भी रथ पर हो। अब तुम नाहक अपने सिर पर धोना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। जीवन की धारा अपने आप परमात्मा की तरफ बह रही है, बह ही रही। अब तुम अगर गंगोत्री की तरफ तैरो तो तुम्हारी मर्जी। अगर धारा के साथ बहने को राजी हो जाओ पहुंच जाओगे, मगर एक बात ख्याल रखना, धारा के साथ बहे कि न तुम्हें कोई त्यागी कहेगा, न कोई तपस्वी कहेगा, न कोई महात्मा कहेगा। धारा के साथ बहे कि लोग कहेंगे अरे राग रंग में पड़े, लोग कहेंगे अरे ये कैसा सन्यास, मेरे सन्यासी को यही तो आलोचना झेलनी पड़ रही, क्योंकि मैं सन्यास एक जीवन की स्वाभाविक दशा मानता हूं। मैं तुम्हें अगर उल्टा चलना सिखाऊं तुम्हें बड़ा सम्मान मिलेगा। मैं तुम्हें जीवन की जो सहज गति है उसके साथ तालबद्ध होना सिखा रहा हूं। तुम्हें सम्मान मिलने वाला नहीं, तुम चाहना भी मत। न मिले तो इसके कारण विषादग्रस्त भी न होना, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ज़ेन फकीर कहते हैं, जब भूख लगे खा लो, जब प्यास लगे पी लो, जब नींद आ जाए सो जाओ, बस इससे ज्यादा और कोई साधना नहीं। मगर ऐसे आदमी को क्या तुम सम्मान दोगे? भूख लगे खा ले, प्यास लगे पी ले, नींद आए सो जाए, तुम कहोगे इसमें योग कहां? यम नियम इत्यादि का क्या हुआ? आसन प्राणायाम प्रत्याहार उस सब का क्या हुआ? जब भूख लगे खा ले, जब नींद लगे सो जाए, जब प्यास लगे पी ले, ये कोई साधना हुई? मगर मैं तुमसे कहता हूं यही असली साधना, सहज योग। अगर सहज योग को समझो कृष्ण तीर्थ, बह चलो तरण की तरह गंगा की धार में, फिर जीवन संघर्ष नहीं, फिर जीवन उत्सव है, महोत्सव है।
अभी सुना गया नंबर चिन्मय डंस्टर की एल्बम गायास गार्डन से लिया गया है, और प्रोग्राम में मोस्ट ऑफ द म्यूजिक म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से है। और लास्ट डांसिंग नंबर राजी की एल्बम से लिया गया है। प्रोग्राम के आखिर में हम डांस मेडिटेशन में उतरेंगे, जिसे हमने ओशो स्टॉप डांस मेडिटेशन फॉर्मेट में अरेंज किया है। तो एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
जागो, आनंद बरस रहा है। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, अस्तित्व का स्वभाव है। तुम सोए हो इसलिए अपरिचित हो। खोजना नहीं है कहीं, सिर्फ जाग, सिर्फ जाग, सिर्फ होश, सिर्फ पुनः स्मृति अपने निज की। और तत्क्षण बरस उठता है आनंद, जैसे मेघ बरस जाए, और बरसते मेघों के नीचे नाचते मोर देखे, वही उत्सव है। ऐसे ही मैं तुम्हें भी नाचते हुए देखना चाहूंगा। नृत्य के ही पाठ दे रहा हूं, गीत के ही पाठ दे रहा हूं। Yeah.